नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। नंबर एक बार आपके लिए फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000, 1811-7001। कल का दिन भारत की न्याय प्रणाली के लिए एक ऐसा दिन था जो कि पहले कभी नहीं आया। इस देश में जो झगड़े विवादों का निपटारा करते हैं उन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन जब इन्हीं पंच परमेश्वर में से चार जज अपनी बात कहने के लिए प्रेस का सहारा ले लेंगे तो इस न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। ये चार जज हैं, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुरू, जस्टिस कुरियन जोसेफ। सुप्रीम कोर्ट के नंबर दो जस्टिस जे चेलमेश्वर के निशाने पर कल मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र थे। जस्टिस ने कहा कि अदालत के प्रशासन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने कहा,
My dear friends, we are all four of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity,
जज ये कह रहे थे कि हम चारों इस बात पर सहमत हैं कि इस संस्थान को अगर नहीं बचाया गया तो इस देश में या फिर किसी भी देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा, और मैं नहीं चाहता 20 साल बाद कोई ये कहे कि बुद्धिमान व्यक्ति ये कहे कि जस्टिस चेलमेश्वर, रंजन गोगोई और मदन लोकुरू और कुरियन जोसेफ ने अपनी आत्मा बेच दी। तो आज चर्चा इसी विषय पर हम कर रहे हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील डॉक्टर सूरत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली टिप्पणी, क्या ये जजों का सिर्फ आपसी झगड़ा है या फिर न्यायपालिका के लिए वाकई एक बड़ा संवैधानिक संकट हो?
देखिए, आज तक 1950 से लेके 2018 तक ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कहें कि हमारे अंदर में एक अंतर्द्वंद चल रहा है और वो अंतर्द्वंद जो है वो भारतीय जनता के सामने लाया जाए और भारत के प्रजातंत्र को खतरा है इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी पे।
क्योंकि कभी भी देखा नहीं गया कि कोई जज अपनी बात कहने के लिए कभी प्रेस का सहारा ले, और कई बार ऐसा भी होता है कि जजेस से जब आप टिप्पणी मांगते हैं तो कभी कोई इस तरह की बात नहीं आती, क्योंकि बंद दरवाजे की बात है।
माना ये जाता है कि जज अपने जजमेंट के माध्यम से बोलता है तो उसके अतिरिक्त नहीं, और एक जो कॉन्फिडेंशियलिटी की, एक डिग्निफाइड साइलेंस की जो एक कन्वेंशन है सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उनके काम इसलिए नहीं डिफाइन किए जाते हैं कि उनसे ये माना जाता है कि वो आत्मसंयम, आत्मविवेक का परिचय देते हुए जो काम करेंगे ठीक करेंगे। जो आदमी भारत के सबसे बड़े डिसीजन लेते हैं उन पर ये विश्वास किया जाता है कि वो जो निर्णय लेंगे वो विवेकपूर्ण होंगे, तो इसलिए पाबंदी नहीं है, सिर्फ पाबंदी है आपकी अपनी आत्मा की। अब इन चार जजेज ने जो बहुत ही सम्माननीय हैं, सीनियर मोस्ट हैं, और जिनकी इंटेग्रिटी पर कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, जिनकी इंटेलिजेंस पे कोई डाउट नहीं है, वो अगर सबके सामने आ रहे हैं तो इसका क्या किस दृष्टिकोण से देखा जाए? एक दृष्टिकोण जो कन्वेंशनल लोग हैं वो ये कहते हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, और एक जो प्रोग्रेसिव लोग हैं ये कहते हैं कि कम से कम अब सच्चाई सामने तो आई। जैसे डाइवोर्स के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका में दे हैव डाइवोर्स, इन इंडिया वी हैव डेड मैरिजेस, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ मैं इसको एक पॉजिटिव संकेत के रूप में देखता हूँ कि बात सामने आने लगी है, क्योंकि देखिए भारत
न्यायपालिका पर संकट है,
न्यायपालिका संकट नहीं है, बल्कि संकट तब होता जब ये बात रिप्रेस्ड कर लेते।
लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं, जजेस मजबूर हो जाते हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो जो एक आम आदमी बैठा है जिस पर जिसकी आस्था है भारत के इस न्याय प्रणाली पर, विश्वास करता है, उसको तो थोड़ा सा धक्का लगता होगा।
नहीं, देखिए आस्था झूठी नहीं होनी चाहिए, तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। सबको पता है कि जजेस कितने भी बड़े हैं तो वो इंसान ही, और अगर इंसान है तो उनको हम जो है इंसान की तरह से माने, उनमें झगड़े भी होंगे, ये परिवार का झगड़ा है, कोशिश की जानी चाहिए थी कि वो आंतरिक रूप से हल करें,
पड़ जाता
नहीं तो, लेकिन इट इज़ ए हेल्दी डिबेट,
आपसी झगड़ा है ये, जजों का आपसी झगड़ा,
ये आपसी झगड़ा है। और मैं तो थोड़ा सा सख्त शब्दों में कहूँगा कि ये पावर के डिवीजन का झगड़ा है,
मतलब शक्तियों का संतुलन
के विभाजन का है कि भाई एक आदमी जो सीनियर मोस्ट जज है वो चाहेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट केसेस उनके से डिस्कस किए जाए, उनके साथ आए। लेकिन एक चीज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बराबर हैं, चीफ जस्टिस में फर्स्ट अमंग इक्वल है। तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम दिया गया है कि वो चाहे जिसको असाइन करें।
अभी इस पर चर्चा हम करेंगे, हमारे साथ कुछ श्रोता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले एक श्रोता को शामिल करते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं। हेलो।
हाँ भैया, मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का गांव बम्होरा पड़ता है, वहां से बोल रहा हूँ।
हाँ, नाम तो बताइए।
अरूप दीक्षित।
अरूप दीक्षित जी, क्या कल के इस विवाद के बाद जब आपने जजों को देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, न्यायपालिका पर विश्वास अभी भी बरकरार है या थोड़ा सा डगमगाया या क्या सोचा आपने?
हेलो।
हाँ जी,
बिल्कुल सत पर सत बरकरार है। एक छोटी बात आपसे कहूंगा, आप लोग बहुत जीनियस हैं। एक सत्य को उद्घोषित कर दिया गया। बहुत साल पहले आपके ही बीबीसी से सुना था महात्मा गांधी का इंटरव्यू नहीं, उनके आपने बहुत रोचक जानकारी दी थी कि सत्य को कटघरे में खड़ा किया गया। तो आज सत्य को अगर उद्घोषित कर दिया गया तो इसमें अपरी क्या हो गया?
बरकरार है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको ये लग रहा है?
सब कुछ देखिए सर जी, अगर किसी की भावनाएं थी तो भावनाएं को आपने ही बहुत दिन पहले कहा था कि न्यायालय को गतिशील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तमाम जजमेंट लाइन से हटके कर देते हैं, तमाम ऐसे जजमेंट कर देते हैं जो कानून में नहीं है। और अभी चार दिन पहले इनका आया था आपका चीफ जस्टिस साहब का कि मान्य परंपराओं से हटके होना चाहिए। धारा 377 में उन्होंने अभी हस्तक्षेप किया है कि ये स्थापित मान्यताओं के विपरीत है ये, और इस पर अलग सुप्रीम कोर्ट को सुना चाहिए। तो अगर जजों ने कुछ सोच लिया, कुछ कह दिया पब्लिक सामने, पब्लिक भी एक से ऊंचे लोग बैठे हुए हैं, सम्मानित हैं, अच्छे लोग हैं, वो सब जान गए तो इसमें बुरा क्या हो गया?
मतलब आपको ये लगता है कि ये प्रोग्रेसिव अप्रोच है और ये बहुत अच्छी चीज है?
हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है,
प्रगतिशील होना चाहिए था। प्रगतिशील है और अच्छा है और ये होना चाहिए था।
न्याय को प्रगतिशील होना चाहिए। अगर ये न्याय किताबों में ही दब जाएगा तो लोग कैसे जान पाएंगे कि
जी, आपकी, आपकी, आपकी इसी बात पर डॉक्टर सूरज सिंह कुछ कहना चाहते हैं।
दीक्षित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जीवन के साथ जीवन चलने का नाम और जो न्याय प्रणाली है उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक देखिए ये ऐसा ही है कि कोई बच्चा घर बैठ के सोचे कि हमारे माँ बाप आपस में कोई आत्मीय संबंध नहीं रखते, तो उनके सोचने से वो आत्मीय संबंध तो दूर नहीं हो जाते। लेकिन अगर सेक्स एजुकेशन आप करने लगे तो इसका नुकसान होगा कि फायदा होगा? तो यहाँ चीजें सामने आ रही है, इंडिया धीरे धीरे सच्चाई की ओर अग्रसर हो रहा है,
मतलब प्रगतिशील हम समाज की ओर बढ़ रहे हैं,
डायनेमिक।
एक और श्रोता को यहीं पर कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं। जी आप तक अगर हमारी आवाज आ रही है तो जी आप तक आवाज आ रही है तो नाम बताइए और बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं। मुझे लगता है आवाज नहीं पहुँच पा रही है। कोई बात नहीं, अगले एक श्रोता को हम शामिल कर लेते हैं।
हेलो
जी, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो सर, नमस्कार।
नमस्कार
सर, मैं ओम नमः शिवाय रेडियो श्रोता संघ मुकाम पोस्ट सगोरिया स्कूल गांधी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंतीलाल सूर्यवंशी। पहले तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।
आपको भी शुभकामनाएं और बधाइयां।
जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये सच्चाई है, न्यायपालिका जो सच जो भी हो रहा है सब सच्चाई का सामना, बहुत अच्छा है, ये देश के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा सर।
मतलब आपका जो भरोसा है और आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका के लिए कोई संकट की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्थितियां रही होंगी ना कि जजेस को अपनी बात कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के पास आना पड़ा।
जी जी, तो सर ये पत्रकारों पे ये बहुत अच्छी बात है, न्यायपालिका में जैसे अपन को न्याय नहीं मिलेगा तो सर क्या होगा, है कि नहीं सर?
न्याय मिलने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज सिंह जी।
सूर्यवंशी जी ठीक कह रहे हैं, देखिए ये आम जनता है और आम जनता को हम लोग जो है जो अलग रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में दूसरी जगह, वो सोचते हैं कि जैसे बस उनको कुछ नहीं पता, ऐसी बात नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है, इनको भी पता है अंदर की कहानी। तो इसलिए इससे हमें घबराना नहीं चाहिए कि हमारा न्यायपालिका पे विश्वास तभी रहेगा जब वो छुपे रहेंगे।
राकेश कुमार हैं फेसबुक पर इस समय, उन्होंने तुरंत टिप्पणी की है कि भारत में न्याय प्रणाली ध्वस्त हो गई। तमाम श्रोता जो फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं उन्हीं में से एक टिप्पणी उठाई मैंने, इनका कहना है राकेश कुमार को कि न्याय प्रणाली ध्वस्त हो गई है।
नहीं और, ये निराशावादी व्यक्ति हैं राकेश जी, कुछ ध्वंस नहीं हुआ है, बल्कि जो फसाड था, जो हिपोक्रेसी थी, जो नहीं दिखाने की बात थी, जो सीक्रेसी थी, उसको सामने रखा गया है। लेकिन मेरी शिकायत,
ये संकट की स्थिति आई कैसे?
संकट की स्थिति ऐसे है, देखिए कॉलेजियम आज की डेट में जजेस के अपॉइंटमेंट ट्रांसफर रियल पावर जो जुडिशरी की है वो कॉलेजियम में, कॉलेजियम में 5 मेन सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ऑनरेबल जस्टिस चमलेश्वर जी भी उसके सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, चीफ जस्टिस के बाद नंबर 2। चीफ जस्टिस फर्स्ट अमंग इक्वल है ये बात ठीक है, दूसरे जजेस का भी बराबर सम्मान होना चाहिए। उनको ये लगता है कि भाई जो ट्रेडिशंस हैं जिसके अनुसार कोई केस कैसे एलोकेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट केस में सीनियर मोस्ट जजेस से हेड कराना चाहिए, वो ये नहीं करा रहे और अपनी मर्जी के जजों को, चाहे वो जूनियर हैं, उनको वो अलॉट कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक आंतरिक है, इससे कोई असली समस्या, ये माइनर डाइग्रेशन है।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको रोटा रोटा कहा जा रहा है, कि भाई आज आपकी तारीख है तो आज आप ये काम करेंगे, कल आप ये काम करेंगे, कल इस पीठ या बेंच में आप ये मामले देखेंगे, कल उस पीठ या बेंच में।
इन लोगों का ये कहना कि 20 साल बाद इतिहास क्या कैसे याद करेगा, रोस्टर के चेंज होने से याद नहीं करता है। 20 साल बाद ऑनरेबल जस्टिस चमलेश्वर जी और दूसरे सारे माननीय कि आपने भारत के इतिहास में कितना न्याय दिया लोगों को, कितनी समस्याओं का हल किया, कितना आपका दूरदर्शी विजन था, इस चीज़ से याद करेगा, ये नहीं कि रोस्टर में कौन बैठा था। तो ये पावर स्ट्रगल इनकी आपस में है जिसको इस तरह से लाने की जरूरत नहीं थी।
मतलब मूल रूप से इसको क्या इस तरह से समझा जाए, जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है उसका, उसको देखते हुए कि भाई आपके पास इंपॉर्टेंट जो मसले दिए जाते हैं।
देखिए माइनर डाइग्रेशन तो है क्योंकि एक ट्रेडिशन बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट की कि एलोकेट कैसे होते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए, देखिए यही सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं जो इमरजेंसी के समय में जब सारे भारत की फंडामेंटल राइट्स खतरे में थे, कोई सामने नहीं आया, उस समय वो कह सकते थे कि इंदिरा जी हम पर दबाव डाल रही है तो हम नहीं ऐसा करेंगे, सिवाय जस्टिस एचआर खन्ना के किसी ने बहादुरी नहीं दिखाई। इतिहास तो उसको याद कर रहा है, उस समय कौन खड़ा हुआ, कितनी बार भारत पर संकट आए, नोटबंदी के समय सारा भारत सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन चाहता था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी नहीं, तारीख पे तारीख लगती रही। तो ये कहना कितने समय में, देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से लेकर अब तक बहुत बड़ा योगदान किया है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है जो विश्व के श्रेष्ठतम न्याय व्यवस्था में से आती है, लेकिन इतने बहुत से ओकेजन है जहां सुप्रीम कोर्ट ने हमें फेल किया है, जहां हमारे स्तर पर नहीं पहुंच पाई, इमरजेंसी का पीरियड एक पीरियड था, उसके अलावा बहुत से, उस समय कोई जजेज नहीं आए जनता के सामने, वरना जनता के सामने 1977 में अगर ये आते, 76 में आते और कहते कि देखिए हमें दबाया जा रहा है, तो तब हम मानते कि वस्तुतः हमारे जो है न्यायाधीश न्याय करते हैं। तो इसलिए इसलिए ये कहना कि प्रजातंत्र को खतरा है ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है।
एक श्रोता को मैं शामिल करना चाहता हूँ, जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं।
नमस्कार सर, देवीचंद ढाका जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
नाम फिर से बताइए।
देवीचंद ढाका।
अच्छा देवीचंद, हाँ देवीचंद जी।
जी मैं बीबीसी का बहुत पुराना श्रोता हूँ, अचला शर्मा के समय से बीबीसी को सुनता आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार बात करने का मौका मिला
जी।
और ऐसे ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जो भारत की न्यायपालिका और न्यायिक व्यवस्था और लोक व्यवस्था के साथ बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की पहचान है
जी,
लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम जैसा देख रहे हैं सरकार कहीं कहीं न्यायपालिका में दखल डालने की कोशिश कर रही है, एनजेएसी ला करके या और किसी तरह के प्रयास करके, हो सकता है उसी का नतीजा हो आज भारत की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था स्वयं कहीं कहीं देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में खतरा महसूस कर रही है। कुछ खास मुकदमे रोस्टर में कुछ खास न्यायाधीशों को देना जिससे देश प्रभावित हो रहा है, कुछ अलग इशारे कर रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शब्द कहे गए वो कुछ अलग इशारा कर रहे हैं, ये देश के लिए जरूर खतरनाक संकेत है
जी। रोस्टर में, सूरज सिंह जी, रोस्टर में केसेस, महत्वपूर्ण केसेस को अपने पसंदीदा बेंचेस में दे देना, इससे क्या जजमेंट थोड़ी बदल जाएगा?
शर्मा जी ऐसा है, देखिए या तो आप कहिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस पर, उनकी इंटीग्रिटी पर विश्वास नहीं है, तो फिर तो वो योग्य ही नहीं है वहाँ बैठने के लिए, लेकिन अगर वो बैठे हैं और उनको आपने केस दे दिए और ये कहना कि इसके लिए प्रजातंत्र को खतरा है, ये बेमानी बात है। देखिए खतरा क्या है, या तो सीधे कहें कि चीफ जस्टिस करप्ट है, अगर
नहीं इन सब मामलों में ये सब तो बात है ही नहीं,
नहीं तो अगर ये नहीं है तो किस चीज़ का खतरा है भाई, 5 जजों की बजाय 3 जज दूसरे अपॉइंट कर दिए, तो ये तो इंटरनल व्यवस्था है ना,
और जजमेंट इससे थोड़ी प्रभावित होने वाला है।
जजमेंट प्रभावित नहीं होने चाहिए, अगर इतनी आसानी से प्रभावित होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए जज रहने के लायक ही नहीं है।
नहीं लेकिन ऐसा तो भारतीय न्याय प्रणाली में, न्याय व्यवस्था में ऐसी बातें तो कभी होती नहीं है।
तो
मतलब भारत की जो यहाँ की न्याय व्यवस्था है उसमें इस तरह के सवाल नहीं उठते कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गलत निर्णय दे दिया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है।
नहीं उसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है। देखिए चीफ जस्टिस बर्कर जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, इट इज़ नॉट नेसेसरी द बेस्ट और द वाइजेस्ट, कि हम फाइनल अथॉरिटी हैं, लेकिन हमारा फैसला हमेशा सही होगा या सबसे समझदारी का होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही जजमेंट गलत किए, पहला ही जजमेंट ए के गोपालन 1950 का इतना बेकार जजमेंट था कि 1977 तक, जब तक मेनका गांधी में वो ओवर रूल नहीं हुआ, तो नुकसान होता
ऐसे ना? ऐसे भारत के जो अगर हम न्याय प्रणाली के तमाम ऐसे मामले हैं,
हाँ।
जैसे उदाहरण के तौर पर गोलकनाथ केस का उदाहरण ले लीजिए, आप केशवानंद भारती केस का उदाहरण लीजिए, मिनर्वा मिल्स केस का उदाहरण लीजिए, और ये सारे भारत की न्याय प्रणाली के ऐसे मुकदमे हैं जिसमें की अदालत ने सर्वोच्च अदालत ने,
हमने खुद आर्ग्यू किया था नरसिम्हा राव ब्राइबरी केस JMM, ठीक है हमें खुशी है हमने जीता, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गलत डिसीजन दिया।
तो ये निर्णय जो है ये दरअसल समय सापेक्ष निर्णय है, उस समय की परिस्थितियों
पर ऑनेस्ट डिबेट होनी चाहिए।
डिबेट हुई
अमेरिका में
जी,
ऐसे ऐसे डिसीजन हुए 1897 में जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्लैक जो है प्रॉपर्टी है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में 1954 में, यानी 55-60 साल बाद ठीक किया।
उदाहरण के तौर पर मैं इसको यहीं पर संक्षेप में, क्योंकि विषय में हम लोग चर्चा आगे इसी पर बढ़ाते रहेंगे, सिर्फ संक्षेप में यही बात भाई, जिस तरह से भारत में संपत्ति के अधिकार को लेकर बहस चली और मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच में जो बहस जारी थी, जिस पर ये सारे केसेस एक दूसरे के ऊपर हावी होते रहे और जजेस यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलता रहा, तो वो प्रोग्रेसिव अप्रोच थी,
प्रोग्रेसिव
अप्रोच थी, और संपत्ति का अधिकार आज मूल अधिकार नहीं।
आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला एक वो है केशवानंद भारती केस, उसमें 13 जज थे, 67 दिनों तक उन्होंने बहस सुनी, और अंतिम फैसला 6 जज इधर 6 जज इधर, एक जज के फैसले से इधर
फैसला पलट गया। खैर कार्यक्रम में हम वापस आते हैं, हम लोग बहुत ही एडिक जिसको कहते हैं कि बहुत ही ज्ञान वाली डिबेट में चले गए, कार्यक्रम में श्रोता को शामिल करते हैं। जी नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं समझ में आया,
राजस्थान से बोल रहे,
राजस्थान से, हाँ बाड़मेर से बोल रहे हैं, नाम नहीं समझ में आया, अपनी बात रखें आप।
झुंझाराम जी सर
जी, आपकी आवाज जो है, झुंझाराम जी आपकी आवाज जो है,
झुंझाराम जी हाँ बोलिए, झुंझाराम जी
भारत
सर, हाँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट ने किया था वो अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया सर,
सुरक्षा के लिए
जो किया है वो अच्छा किया है।
अच्छा, जो किया है बहुत अच्छा किया है, कैसे आपको लगता है कि अच्छा किया है?
हाँ बिल्कुल अच्छा किया सर, वो लोकतंत्र है सर, वो लोकतंत्र बच गया सर जनता के लिए
जी।
अच्छा सर, सर ये सब सर सबके सामने सब रह जाएंगे तो ये कैसे बच पाएंगे
जी? आधी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई, हम समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाहते
हैं। शर्मा जी देखो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है, इसका मतलब अभी तक जितने श्रोता आए हैं उनको हम भारत की जनता का अगर रिप्रेजेंटेटिव माने तो अभी तक 4 में से 3 लोगों ने इस चीज को अप्रूव किया, इसका मतलब भारत की न्यायपालिका की विश्वास पर कोई कमी नहीं आई है,
संकट नहीं है। एक और श्रोता को यहीं पर शामिल कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि भाई वो क्या सोचते हैं। नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
जी मैं बजरंगलाल शर्मा, राजस्थान जिला सीकर से बोल रहा हूँ।
भजनलाल जी अपनी बात रखिए।
बजरंग जी
हाँ
जी सर, मैं बीबीसी का 1990 से पुराना श्रोता हूँ, मैं नमन करता हूँ बीबीसी मंच को।
हाँ हाँ
एक्चुअली सर मैं उस समय का श्रोता हूँ जब ममता गुप्ता ओंकारनाथ श्रीवास्तव बोला करते थे, हमें जो है बीबीसी के माध्यम से हमें टाइम टेबल भी भेजा करते।
चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं जी। आज के विषय पर आप प्रकाश डालें, आज के विषय पर थोड़ा प्रकाश डाल दें तो बेहतर होगा।
सर मैं न्यायपालिका के इतिहास में जो कार्य इन 4 जजों ने किया है महोदयों ने, मैं इसे जो है कारगुजारी कहूंगा।
कारगुजारी
जी जी कारगुजारी इसलिए कहूंगा कि इन्होंने जिस खुले मंच का इस्तेमाल इन्होंने किया है वो इनके पदानुकूल नहीं था। इन्हें चाहिए था कि वे अपने इंटरनल मामले या तो खुद सुलझाते अथवा उस मामले को कहीं राष्ट्रपति जी से मिल करके या उसका समाधान बंद कमरे में ही निकालते। ये तो वैसे ही हो गया जैसे सर किसी घर का बड़ा मुखिया अपने समस्याओं को गांव के चौपाल में ले जाकर के उसका मतलब दूसरी भाषा में उसका पोस्टमार्टम करे, भला ऐसा करके उन्हें अपने न्यायप्राणता की मर्यादा को कुठाराघात किया है।
जी बजरंग जी, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ हाँ,
लोग जिस न्याय के प्रति मतलब एक बंद मूर्ति समझते थे कि पता नहीं क्या है न्याय, न्याय तो एक तरह से जो है पंच परमेश्वर का एक प्रतिनिधि करता है, वो आज इस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके 4 जज, एक दीपक मिश्रा, एक चीफ जस्टिस, एक दूसरे के ऊपर जो है वो तो एक जिसको कहते हैं ना कि
अच्छा नहीं हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगाए, ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर एक श्रोता को और शामिल कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
हेलो सर, मैं मराठवाड़ा के बीच जिले से बात कर रहा हूं।
नाम बताएं।
पाटिल साहब बोल रहा हूं, दादर साहब पाटिल।
दादर पाटिल जी।
हाँ सर, मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जो न्यायमूर्ति सीनियर सर से चीफ जस्टिस की उसको लेकर जो कुछ बातें हो रही है और कुछ ऐसी चीजें हो रही है पिछले तीन सालों से, ये हमारे न्यायपालिका के लिए एक खतरा है, क्योंकि हमारे लोगों का जो विश्वास है, बहुत सबसे ज्यादा विश्वास अगर कोई है लोकतंत्र में तो हमारी न्यायपालिका पर है। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ सर, और मुझे लगता है कि ये जो सरकार पर प्रचार के घेरे में है कि सरकार वाकई में अगर इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है तो उनको अपना जो पक्ष कर देना चाहिए।
जी, सरकार खतरे में, सरकार कटघरे में है। दो श्रोताओं से अभी हमने बात की, एक ने कहा कि घर की बात थी, इसको घर में सुलझा लेना चाहिए था, काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं, और दूसरे कह रहे हैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
देखिए, यहाँ इसका एक पक्ष शर्मा जी जो है वो ये कि जिन पर सारा भारत विश्वास करता है कि ये न्याय करेंगे तो ये उम्मीद की जाती है कि अपने फैसले आप तो ठीक कर ही लेंगे।
हाँ।
तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भाई अपनी आंतरिक बात, जैसे इन्होंने कहा चौपाल में अंदर की बात रखना, उस हद तक तो माना जा सकता है, लेकिन जब एक चीज़ सामने आ रही है और उसका एक डिबेट सारे देश को बताई जा रही चीज़ हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीक्रेसी की परिभाषा, अंदर कॉन्फिडेंस, कमरे में बात करना, ओल्ड बॉयज़ नेटवर्क, ये पहले तो चलता था प्रजातंत्र में, जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो ये हेल्दी डेवलपमेंट।
इस बातचीत में एक मुद्दा जो है ना जो छूट रहा है
जी,
ये जस्टिस लोया की जो मौत के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष ने जांच की मांग की, राहुल गांधी ने जांच की मांग की
जी।
यहाँ पर श्रोताओं को ये भी याद दिलाना जरूरी है कि जज लोया जो थे वो गुजरात में शराबुद्दीन केस की
सीबीआई
सुनवाई कर रहे थे। तो ये जो केस है, क्या ये इससे जुड़ा हुआ मामला है?
इसका कनेक्शन,
क्यों चर्चा इससे आई?
इससे कनेक्शन सिर्फ इतना है कि जब पीआईएल उसके अगेंस्ट आई लोया वाले केस में, तो किसको उस केस के लिए मनोनीत किया जाए, इस बारे में पांच जजेस की बेंच में ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिश्रा ने अपने रोस्टर, मास्टर रोस्टर का प्रयोग करते हुए जो सीनियर मोस्ट जजेज है उनको वो नहीं सौंपा, तो उससे वो बहुत
आहत हुए
कि भाई यहाँ तो कन्वेंशन कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा है। तो इसलिए ये मेन आरोप क्या है इन चार जजेस का, मेन आरोप ये है कि चीफ जस्टिस मिश्रा जो पुरानी कन्वेंशन है उसको, सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट ना करके जो अपने चहेते जजेस हैं उनको अपॉइंट करके,
ये कितनी खतरनाक बात है?
ये खतरनाक बात यह कि अगर आप सीधे करप्शन का आरोप लगा रहे हैं कि उनको कुछ लाभ होगा या वो कोई पहले से ही डिजायर्ड रिजल्ट लेना चाहते हैं, तब तो इसमें करप्शन है, वरना तो चीफ जस्टिस की ये डिस्क्रिशन है कि वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे करे बेंच को। तो या तो देखिए, चार जजेज या तो सीधे कहें कि चीफ जस्टिस मिश्रा जी करप्शन कर रहे हैं और सामने आए, या फिर ये इशारा भी कर दें कि उनकी
ऐसी कोई बात नहीं,
ऐसा कुछ नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं, कुछ तो नहीं है। स्थिति से उभरेगी कैसे भारत की न्यायपालिका?
सीधी सी बात है कि ये जो डेवलपमेंट है ये, क्योंकि अभी तक न्यायपालिका दूसरे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो
या जुडिशरी हो,
नहीं जुडिशरी तो है, उन पर कह रहे थे कि उनको बड़ा फेयर, रीजनेबल, जस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। अब बात उन पर भी आ गई कि जो आप दूसरों को कह रहे हैं पंडित जी, जिसको जो आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा आपके घर तक आ गई है। तो अब जजेस का टेस्ट ये होगा, जैसे धर्मवीर फिल्म में था कि मैं उस दिन इंसाफ को देखूंगा जब ये इंसाफ महल पर आएगा, तो महल को बचाने के लिए कानून मोड़ा जाता है या महल तोड़ा जाता है।
तो अभी हाल, मतलब अब आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, आगे कुछ परिवर्तन
आने वाले दिनों में? ये जो बहुत हेल्दी डिबेट है जो अमेरिका जैसे कंट्री में 50 साल पहले थी, इंग्लैंड में 60 साल पहले थी, वो अब इंडिया में आई है, क्योंकि जुडिशरी का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। नोबडी किक्स द डेड डॉग, पुरानी कहावत है, जो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है क्रिटिसिज्म, चर्चा उसी की होती है।
तो आने वाला समय जो भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए बेहतर समय होगा?
देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, हमारे लिए गर्व का विषय थी, है और रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूरज सिंह जी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तमाम उन श्रोताओं का शुक्रिया जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए, और उनसे माफी जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए। सुबह नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को राजेश चौहान के साथ विदा दें, नमस्कार।